नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों आपका। मैं हूं मुनीश शर्मा
और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर।
आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 से 28 फरवरी का अंक और इस पर आधारित आखिरी भाग के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, संकल्प से सिद्धि के मंत्र और अमृत यात्रा की ओर बढ़ते निर्णायक कदम के साथ ये आम बजट भी विकास, विश्वास और भविष्य की त्रिवेणी को साकार करने वाला आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त बजट बन गया है। बजट में सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप किसानों की आय बढ़ाने, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर पर ध्यान देने, पूर्वोदय और उत्तर पूर्व क्षेत्र को और समृद्ध करना तीसरा कर्तव्य बताया गया है।
बजट 2026-27 ही इस बार हमारी आवरण कथा बनी है। इसके अलावा पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों में व्यक्तित्व की कड़ी में लड़का विद्रोह के महानायक बुधु भगत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद में अभिभाषण, पद्म सम्मान 2026, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण, इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। साथ ही पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात और बैक कवर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह पर विशेष सामग्री समाहित है।
केंद्र सरकार के प्रयासों से केरल के विकास को निरंतरता के साथ एक नई गति मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है और यहीं से पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत करते हुए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया तो रेल कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने, तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने जैसी पहल आगे बढ़ी। कभी क्रेडिट कार्ड अमीरों तक सीमित होता था, लेकिन अब देश भर के रेहड़ी पटरी वाले लाखों लोगों को भी इसकी सुविधा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी में केरल के तिरुवनंतपुरम से इसकी शुरुआत की। पिछले 11 वर्षों में करोड़ों देशवासियों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का बहुत बड़ा काम हुआ। पहले सड़कों के किनारे गलियों में सामान बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स की स्थिति बहुत बुरी थी। उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ 100 रुपए भी महंगे ब्याज पर लेने पड़ते थे। केंद्र सरकार ने पहली बार इनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई। इस योजना के बाद देशभर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है। लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को जिंदगी में पहली बार बैंक से कोई लोन मिला है। अब भारत सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए इन लोगों को क्रेडिट कार्ड दे रही है। इससे देश भर के रेहड़ी ठेले, फुटपाथ पर काम करने वालों को लाभ होगा। केरल से विकास की पहल से जुड़ी योजनाओं की जानकारी पत्रिका में शामिल है।
भारत विकास के साथ विरासत को भी भावी पीढ़ी से जोड़ने और उसे संजोने का काम कर रही है। इसी कड़ी में भारत के लिए न्याय और करुणा भाव के साथ भविष्य की एक संकल्पना पेश करने वाले संत रविदास की 649वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर पहुंचे। यहां एक हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। वहीं संत परंपरा और विरासत को भावी पीढ़ी से जोड़ने के लिए आदमपुर हवाई अड्डे को दिया नया नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा आदमपुर। समाज सुधारक और संत रविदास महाराज ने राष्ट्र को सेवा का मार्ग दिखाया। सामाजिक समरसता और सद्भावना का दीप प्रज्वलित कर समानता, करुणा और मानवीय गरिमा की शिक्षाएं दी जो भारत के सामाजिक मूल्यों को प्रेरित करती हैं। गुरु रविदास महाराज की जयंती पर पंजाब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये निर्णय लिया गया है कि आदमपुर हवाई अड्डे को अब से श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। ये श्री गुरु रविदास महाराज जी के चिरस्थायी आदर्शों को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। समानता, करुणा और सेवा का उनका संदेश हम सभी को अत्यधिक प्रेरित करता है। श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट की जानकारी पत्रिका से ली जा सकती है।
भारत का नागर विमानन क्षेत्र आज देश के सबसे तेजी से विकसित होते क्षेत्रों में शामिल हो गया है। एक समय था जब हवाई यात्रा कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि के साथ ही देश के विमान बेड़े में भी बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा है। इसी पृष्ठभूमि में विमानन इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण को नई गति देने के मकसद से हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया।
भारत अभी हवाई यात्रा को चुनिंदा लोगों के क्लब से बाहर निकालकर आम जन तक ले आया है। भारतीय विमानन क्षेत्र ने देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने, मजबूती से राष्ट्र के एकीकरण और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अपने लक्ष्य विकसित भारत 2047 की ओर आत्मविश्वास से बढ़ने के लिए सशक्त भी किया है। इसी कड़ी में एशिया के सबसे बड़े नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 में भारत ने न केवल देश की विमानन विकास गाथा को प्रदर्शित किया बल्कि वैश्विक स्तर पर नागरिक उड्डयन में देश में मौजूद अवसरों से भी निवेशकों को अवगत कराया। विंग्स इंडिया 2026 की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है।
दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। करीब 97 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं, तो 700 से ज्यादा राजनीतिक दल भी हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के सदस्य राष्ट्रों की परिषद की अध्यक्षता भी ग्रहण की है। लोकतंत्र की समृद्ध परंपरा और निष्पक्ष पारदर्शी एवं समावेशी चुनाव प्रक्रिया को वैश्विक मंच पर साझा करने के उद्देश्य से भारतीय निर्वाचन आयोग ने 3 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। इस आयोजन ने चुनाव प्रबंधन में भारत की भूमिका और सुदृढ़ की। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने चुनाव प्रबंधन निकायों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान किया, जहां चुनावी प्रक्रियाओं में नवाचार, तकनीकी हस्तक्षेप और मतदाता सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस आयोजन की विस्तृत जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है।
भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। ऐसे में केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। इसी कड़ी में 24 जनवरी को 61,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मेले में सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज आप सबको सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, जो एक तरह से राष्ट्र निर्माण का निमंत्रण पत्र है। ये विकसित भारत के निर्माण को गति देने का संकल्प पत्र भी है। युवाओं को कौशल से जोड़ना और उन्हें रोजगार स्वरोजगार के अवसर देना केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। इसी कड़ी में सरकारी भर्तियों को मिशन मोड पर लाने के लिए रोजगार मेले की शुरुआत की गई। यही कारण है कि बीते वर्षों में रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। रोजगार मेले की जानकारी पत्रिका में शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने सेवा भाव को इन शब्दों में बताया।
साथियों, चाहे प्रधानमंत्री हो या सरकार का छोटा सा सेवक, हम सब सेवक हैं और हम सबका एक मंत्र समान है। उसमें न कोई ऊपर है न कोई दाएं बाएं है, और हम सब के लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, वो मंत्र कौन सा है? नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ हमें काम करना है। आप भी करते रहिए। एक बार फिर आपके जीवन में ये जो नई वसंत आई है, ये नया जीवन का युग शुरू हो रहा है और आप ही के माध्यम से 2047 में विकसित भारत बनने वाला है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम ऐसा है जिसके स्मरण मात्र से मन में देश प्रेम का ज्वार उमड़ पड़ता है। उन्होंने युवाओं को संगठित कर आजाद हिंद फौज बनाकर प्रथम सैन्य अभियान चलाया। अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराकर वर्ष 1943 में ही आजाद भारत की घोषणा कर दी। उनकी जयंती 23 जनवरी को देश वर्ष 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में मनाता रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पराक्रम दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पराक्रम दिवस देश की राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय चेतना का एक अभिन्न पर्व बन गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई के महानायक के साथ ही स्वतंत्र भारत के महान स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे भारत की संकल्पना की थी जिसका स्वरूप आधुनिक हो और उसकी आत्मा भारत की पुरातन चेतना से जुड़ी हो। नेताजी के इस विजन से आज की पीढ़ी को परिचित कराना सभी का दायित्व है। केंद्र सरकार इस दायित्व को बखूबी निभा रही है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि उन पर किए गए विभिन्न कार्य केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान ही नहीं है, ये युवा पीढ़ी और भविष्य के लिए भी अमर प्रेरणा के स्रोत हैं। इस आयोजन की जानकारी पत्रिका में शामिल है।
भविष्य की जरूरतों और चुनौतियों को देखते हुए भारत अब सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा नहीं बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रहा है। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अपार अवसर है। यही वजह है कि गोवा में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक प्रतिनिधियों से मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, स्केल विद इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया का आह्वान किया, जिसकी विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इन शब्दों में बताया,
साथियों आज का भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर सवार है और हर सेक्टर में तेजी से रिफॉर्म्स कर रहा है। हम डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन को सशक्त करने के लिए रिफॉर्म्स कर रहे हैं और ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना रहे हैं। भारत अब एनर्जी सिक्योरिटी से आगे बढ़कर एनर्जी इंडिपेंडेंस के मिशन पर काम कर रहा है। भारत एक ऐसा एनर्जी सेक्टर इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है जो भारत की लोकल डिमांड को पूरा कर सके और एफोर्डेबल रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन से दुनिया के लिए एक्सपोर्ट भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो। साथियों हमारा एनर्जी सेक्टर हमारी एस्पिरेशंस के केंद्र में है। इसमें 500 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मेरा आह्वान है मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, स्केल विथ इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया।
श्रोताओं समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज की चर्चा को देते हैं यहीं विराम। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसका पता है newindiasamachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने बहुमूल्य सुझाव भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहा करता है हमें हमेशा बड़ी बेताबी से इंतजार। दोस्तों मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।